ओम शांति। सबसे पहले हम अपने सुप्रीम टीचर का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने डायरेक्ट पढ़ा करके हम सबको इतना योग्य बनाया। शुरू शुरू में जब मैं आपस में कभी रूरियान करते थे दादियों के साथ, तो उनका एक प्रश्न होता था, आपका बाबा के साथ सबसे अच्छा और समीप का संबंध कौन सा है? तो मैं हमेशा एक ही उत्तर देता रहा हूं कि मैं बाबा को अपना टीचर बना करके अभी तक भी पढ़ रहा हूं। कितना बाबा ने पढ़ाया, कोई मेरे से पूछता आप कितना पढ़े हो, मैं कहता हूं अभी हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, पढ़ाई चल रही है। और बाबा का एक वर्सन है कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, और सुप्रीम टीचर से ही पढ़ना है और कोई से नहीं पढ़ना है। मैंने कंप्यूटर किसी से नहीं सीखा, टाइप किसी से नहीं सीखी, जो कुछ सीखा बाबा के घर में सब बाबा से ही सीखा। बैठ जाते बाबा की याद में, जो बाबा को कराना है उंगलियां अपने आप चलने लगती। तो इसलिए सुप्रीम टीचर के साथ शुरू से ही बहुत प्यारा संबंध रहा है, वो हमें पढ़ा रहे हैं और जब तक हमें पढ़ाई की डिग्री नहीं मिल जाएगी तब तक हम पढ़ते रहेंगे। डिग्री है ना हमारी पढ़ाई की, कौन सी डिग्री है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये हमारी पढ़ाई की डिग्री है। भविष्य डिग्री तो बाद में मिलेगी, लेकिन संगम पर हम सब इसी स्टेज तक जब पहुंचेंगे तब ट्रांसफर होंगे सतयुग के अंदर। इसलिए जो कुछ हम बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मुरलीधर की मुरली है और ड्रामानुसार सारे, एक टाइटल किसी ने मेरे को अचानक दिया था कि आप तो कुबेर के भंडार के धनी हो गए हैं, कुबेर का भंडार आपको मिला है। तो हमारे पास कुबेर का भंडार है, जितना कुछ बाबा ने सुनाया है, दादियों ने जो सुनाया है, जो पढ़ाया है, वो सब इन उंगलियों ने ही टाइप किया है, कंप्यूटर में है। इसलिए कुबेर का खजाना है और ये बांटने का सौभाग्य भी ड्रामा अनुसार ही मिला है, मांग के नहीं लिया है, कि सबको सुनाते चलो। बाकी 1976 से बाबा की मुरलियां टाइप की, पूरा डिपार्टमेंट मिला। उसके पहले भी बाबा के साथ व्यक्त रूप में जब बाबा आए तो पूरी पूरी रात बाबा के साथ बैठ करके लिखा, बाबा से रोज टोली खाई। जब बाबा आए हैं तब दृष्टि टोली हमें मिली और बाबा के वर्सन्स जब हम टाइप कर लेते थे मुरली, तो मुरली के बाद तुरंत दादी कमरे में जाती थी और मुरली उनके हाथ में होती थी और दादी उसी समय रात को सोने के पहले पढ़ती थी, आज बाबा ने क्या पढ़ाया है, क्या कहा है, क्योंकि दादी को तो बाबा सुला देता है, तो दादी सो जाती और बाबा मुरली चला देता। उनको जैसे स्वप्न में कोई बात रहती ना, ऐसे कुछ हुआ है, ऐसे कुछ हुआ, ऐसी याददाश्त होती है, पढ़ने के बाद याद आता, हाँ बाबा ने ये बोला है, ये बोला है। तो ऐसे बाबा के साथ, दादी के साथ, एक दादी नहीं लेकिन जितनी बड़ी दादियां हुई हैं उन सब के साथ, और विशेष ज्ञान रत्नों के कारण, मुरली के कारण बहुत समीप का संबंध बना। एक दादी हमारी थी संतरी दादी, नाम सुना होगा, सभी दादियों का पढ़ाई से बहुत प्यार था, मुरली से बहुत प्यार था। तो जिस दिन उसने शरीर छोड़ा मधुबन में ही, रात को मेरे को बुलाया 9 बजे और कहती है, राजू तुम्हारे पास कितना खजाना है? मैंने कहा बहुत है दादी, क्या चाहिए? बोली मुझे सुबह सुबह कलकत्ता जाना है, कलकत्ता में रहती थी उस समय, तुम्हारे पास जो है वो ले आओ। मैं, दादी कितने बजे आएंगी? बोली 9-10 बजे जाऊंगी। हमने, दादी सवेरे दे दूंगा। तो मेरे को कहती नहीं, सवेरे नहीं, अभी ले आओ। अब मेरे को 9 बजे रात को भेजा, जितनी मेरे पास क्लासेज थी, टाइप की मुरलियाँ थी, मैं बहुत सारा बंडल बना के ले गया। 10 बजे रात को पहुंचा, मैंने दादी ये ले लो दिया। दादी बड़ी खुश हो गई, इतना खजाना मिल गया। और सुबह 2 बजे दादी बाबा की गोदी में उठ के चली गई। 4 बजे जब उसकी जो साथ में बहन थी वो जगाने गई, दादी आज क्यों नहीं उठी अभी तक, क्योंकि उनको ट्रांस का पार्ट मिला हुआ था। तो कभी कभी अमृत वेले लेटे लेटे भी ट्रांस में चली जाती थी। तो सोचा कि आज शायद दादी बहुत देर हो गया ट्रांस में गई है, उठी नहीं है। तो सामने से जा करके दादी दादी ऐसे किया, दादी तो ही नहीं, कहाँ चली गई। बुलाया, हिलाया, फिर जगाया, ही नहीं, शरीर छोड़ गई। तो ऐसे वो आत्मा थी, बाबा से इतना प्यार था, बाबा की पढ़ाई से इतना प्यार था कि लास्ट में भी पढ़ाई के लिए खास बुला करके मुरली चाहिए, क्लासेस चाहिए, ये चाहिए, सब लिया। ऐसे ही हमारी दादी चंद्रमणि का भी बहुत प्यार था बाबा से, मुरली से। दादियों का जो मुरली से प्यार, इन दादियों ने और कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, जानकी दादी भी और कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, लेकिन बस मुरली मुरली मुरली। जब दादी चंद्रमणि जी मधुबन से विदाई लेकर के बेंगलोर जा रही थी, गेट पर गाड़ी खड़ी कर दिया हमारे ऑफिस के आगे गेट पर, यहाँ पांडव भवन में लिटरेचर के ऊपर ऑफिस, और दादी जा रही थी, कहती है रुको गाड़ी, राजू को बुलाओ ऊपर से। तो मैं दौड़ के गया, हमने कहा दादी क्या काम है, आप तो जा रही हैं अभी हम बेंगलोर। कहती मैं जा रही हूँ लेकिन मेरे को अभी खजाना नहीं दिया तूने, जाओ जाओ अभी सब खजाना लेके आओ। मैं ठीक है, मैं गया दौड़ करके, सब फोटोकॉपी किया। जब तक गाड़ी खड़ी रखी और पूरी मुरली का खजाना, क्लासेज का खजाना लेकर के अपने साथ बेंगलोर गई और बेंगलोर से वापस नहीं आई, वहीं शरीर छोड़ा। तो अंत मति सो गति, अंत में भी बुद्धि में यही रहा कि मुझे केवल पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के आधार से ही इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। बाबा ने पढ़ाया क्या, 4 बातें ही पढ़ाई ना, 4 ही सब्जेक्ट पढ़ाई है। वैसे तो कहता 2 ही बातें मैं पढ़ाता हूं, अल्लभ और बे। अल्लभ बाबा को याद करो, बे बादशाही मिल जाएगी। तो अल्लभ और बे की पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। लेकिन चारों सब्जेक्ट को यथार्थ रीति से जिस आत्मा ने समझा, जिसने उस तरह से इस जीवन में उतारा, इसी से राजाई बन गई। तस्वीर जो बनाई ना आज बाबा ने, ब्राह्मण जीवन की तस्वीर के आधार से तकदीर, और तस्वीर बनाने की सामग्री कहाँ है, मुरली। और कोई सामग्री है क्या? कोई को भी ऊंचे से ऊंची सतयुगी तकदीर बनानी है, ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करना है, तो उसके लिए बाबा ने जो मटेरियल दिया, तस्वीर बनाओ संगम पर अपनी। तो आप सबने अपनी तस्वीर बना लिया होगा, कैसी तकदीर होनी चाहिए हमारी, राजाई की होनी चाहिए, दातापन की होनी चाहिए, बेफिक्र बादशाही की, इस समय की संगम की, वो सतयुग का भविष्य बन जाए। तो बाबा ने आज के इस मुरली के अंदर तो बहुत अच्छी तरह से हम सब की तस्वीर हमारे सामने रखी कि देखना मेरी तस्वीर में केवल अभी रेखाएं तो नहीं खींच रहा हूं, भर दिया है सब कुछ, और भरने के लिए जो सामग्री चाहिए वो मुरली से मिल जाएगी। अच्छी तरह से मुरली की सिर्फ प्यार से स्टडी करो। जब मैं शुरू शुरू में आया, मुरली के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, ज्ञान में तो थे बचपन से, 4 साल की उम्र से सब परिवार ही ज्ञान में था, लेकिन मैंने एक दिन भी मुरली नहीं सुनी। 15 साल की उम्र तक जब मुरली पूरी हो जाती थी तब मम्मी आकर के मुझे उठाती थी, उठ क्लास में जाना, स्कूल जाना। मैं सोया रहता था 8 बजे तक, 8 बजे मुरली पूरी हो जाती थी। तो मुरली इस घर में लौकिक में जब तक रहे तब तक एक दिन नहीं पढ़ी। केवल बाबा के पत्र मेरे यहाँ घर में जब आते थे मेरे नाम के, तो मैं पढ़ता था, बाबा के पत्र पढ़ लेता था, मुरली नहीं पढ़ता था। लेकिन जब बाबा के घर में आया और दादी जी को मुरली पर ज्ञान डांस करते हुए देखा, ज्ञान डांस करती थी दादी प्रकाशमणि, क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने जैसे दादी को मुरली अधिकार के रूप में दे दी। हमारी दीदी मनमोहिनी ने एक दिन भी मुरली नहीं सुनाई, लेकिन दादी जी ने एक दिन भी मुरली छोड़ी नहीं। मुझे भी दादी के द्वारा एक दो बार ट्रांसफर हुई है मुरली। माना एक बार दादी जी ऐसे ही क्लास में बैठी थी, मुरली सुनाने आई थी क्लास के अंदर ओम शांति भवन में, और मुरली सुनाते जो उठाई मुरली तो दादी को थोड़ी कुछ शारीरिक तकलीफ महसूस हुई। तो दादी ने चारों तरफ ऐसे नजर घुमाई और मैं बहुत दूर बैठा था कोने में, देखती रही, तो मुझे लगा कि दादी शायद मेरे को ढूंढ रही है। मुरली रोक करके ऐसे ऐसे दृष्टि दे रही थी, तो बाद में बोलती, राजू कहाँ बैठा है? मैं खड़ा हो गया, दादी मैं यहां बैठा हूं। कहती, इधर आओ इधर आओ। बहुत सारी टीचर्स बैठी थी दादी के सामने, बड़ी बड़ी टीचर्स बैठी थी, और दादी ने मुझे स्टेज पर बुला करके बाजू में कान में मेरे को बोलती है, मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैं थोड़ा स्नान पड़ जाऊं, तुम मुरली सुनाओ। और मेरे को अपनी सीट पर बिठा दिया। एकदम टीवी पर दादी आ रही थी, उसके जगह पर राजू भाई आ गया। सब देखने लगे, हुआ क्या आखिर, इतनी सब टीचर्स बैठी हैं, इतने सब लोग बहने हैं, और राजू भाई को मुरली क्यों दे दिया? और मैंने सोचा दादी 5-10 मिनट में आ जाएगी, क्योंकि दादी को यह था कि सिंधी में है मुरली दादी के हाथ में, और बहने जो बैठी उनके पास मुरली है या नहीं हिंदी ढूंढेंगी, तो ये सिंधी में ही पढ़ के सुना देगा, इसलिए शायद बुला लिया होगा। तो दादी जी ने जब मुझे मुरली दिया और मैंने मुरली शुरू की बाबा के याद में, तो मैं पूरा टाइम मुरली पूरी कर लिया जब तक दादी वापस नहीं आई। पूरी मुरली सुना करके पूरा किया, तब पता चला मुझे दादी को ज्यादा तकलीफ थी पेट की। ऐसे दादी जी ने, बाबा ने मुरली का वरदान दिया, मुरली टाइप करना, मुरली सिंधी से हिंदी करना, उसमें दादी जी के अंदर बहुत बुद्धि चलती, बहुत विचार चलते थे कि आजकल हमारे सेंटर्स जगह जगह पर खुल रहे हैं, हमारी बहनें बहुत छोटी छोटी हैं, उनको अनुभव नहीं है, बाबा की बातों को कैसे स्पष्ट करेंगी, कोई प्रश्न पूछ देगा तो कैसे उत्तर देंगी, कोई कोई तो सीधी सीधी मुरली पढ़ देती हैं, इसलिए समझ में नहीं लोगों को आता है, तो तुम कुछ करो। मुझे रोज बुलाते थे, एक दिन भी मैं मुरली के बाद अगर दादी जी से नहीं मिला तो मेरी पेशी होती, तुम कहाँ गया था, मुरली के बाद मेरे से मिलो। यहां जब तक रही पांडव भवन तब तक, यहां जब शांतिवन में रही तब शांतिवन में। डेली रूटीन के अंदर था कि 8 बजे अगर मुरली पूरी होगी तो 8 से 9 के बीच में दादी के पास मुझे रहना है। क्या करना है? मुरली को कोई भी बात अगर नहीं स्पष्ट समझ में आ रही है, दादी ने पढ़ी है सुनाई है क्लास में, उसमें क्या कैसे चेंज करो, कैसे लिखो, कैसे इसके प्रश्न उत्तर बनाओ, कैसे इसका एसेंस निकालो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मुझे पूरी मुरली पहले ले करके लाइन करती थी, अंडरलाइन, और उसी पर हमारा ध्यान खिंचवाती थी। देखो ये मुरली है, क्योंकि उस समय मुरली सुनाने के बाद टाइप होती थी, और वो टाइप होने के बाद जब सेंटर्स पर पहुंचती थी तो 1 महीना 1.5 महीने के बाद क्लासेज में मिलती थी। तो एक दिन हम बैठे थे ऐसे ही, दादी जानकी आई लंदन से, और दादी जानकी कहती है बड़ी दादी को, दादी ये राजू जो है ना ऐसे करके ये मुझे बासी भोजन खिलाता है। तो मैंने कहा, दादी मैं भोजन नहीं बनाता हूं, बासी भोजन मैं कैसे खिलाता हूं? अरे बोला, ये मुरली है ना, ये बासी भोजन है, पूरी मुरली हो जाती मधुबन में यहां चलती है, और मैं 1.5-2 महीने के बाद लंदन में पढ़ती हूं, तो बासी नहीं हुई, इसका ताजी है। ठीक है दादी, क्या करूं? अच्छा, तो बड़ी दादी मुस्कुराती रही, कहती तुम सोचो क्या करना है। दादी ये तो बहुत बड़ी बात है, एक साथ लंदन वाले और हम मधुबन वाले एक साथ पढ़ेंगे। कहती कुछ भी करो, मैं नहीं जानती, मुझे उसी दिन की मुरली उसी दिन मिलनी चाहिए। अब बाबा को ही बोलूंगा, बाबा कुछ कर दो, कुछ साधन दे दो, कैसे होगा। लेकिन लक्ष्य रखा कि मुझे 3 महीने पहले मुरली तैयार करनी है, मेरे हाथ में ही होती है, रिवाइज हो रही है। अब बाबा जब आते हैं तो उसके लिए साइंस ने साधन दिया, सुख दिया, भगवान को मदद तो साइंस ने भी बहुत किया है। साइंस नहीं होती तो थोड़ी उसी दिन की मुरली उसी दिन मिल सकती थी। आज हम रात को 11 बजे 12 बजे मुरली टाइप करके तैयार करते हैं और 12:30 के अंदर अंदर पूरे वर्ल्ड में चली जाती है, तो साइंस सुख दे रही है ना। वैसे छापो, प्रिंट करो, पोस्टिंग करो, तो कब तक पहुंचेगी? लेकिन मैंने देखा दादी जी के अंदर जो बहुत संकल्प था कि हमें बासी भोजन नहीं चाहिए, हमें ताजा भोजन चाहिए, तो उस दिन से उन्होंने संकल्प दिया और हमने लक्ष्य रखा कि पूरे ही देश विदेश के अंदर जहां पर भी है, कहीं प्रिंटेड जाएगी, कहीं मेल से जाएगी, और उसके बाद तो ये मोबाइल आ गया, अभी कितना बड़ा विस्तार हो गया। जो बाबा कहते हैं ना, लाखों में मुरली छपेगी, अभी छपेगी या नहीं, लेकिन लाखों में लोग सुन रहे हैं, चाहे वो बाबा के बच्चे हैं और चाहे नहीं है। जहां पर भी चैनल ऑन कर दो, यूट्यूब ऑन कर दो, मुरली आ रही है। पूरे ही भारत के सेंटर्स लॉकडाउन के अंदर तो सब तरफ ऑनलाइन मुरली सुनाई गई, यूट्यूब पर आ रही थी। अब मैं भी कभी कभी बैठता हूँ, देखता हूँ यहाँ की मुरली सुन रहे हैं, यहाँ कौन सुना रहा है, यहाँ कौन सुना रहा है, यहाँ कौन सुना रहा है, चेक कर लेता हूँ पूरा, क्योंकि चारों तरफ अभी ऑनलाइन मुरली है। तो लाखों लोग इसको सुन रहे हैं, बाबा ने क्या कर दिया मुरली को। तो मुरली तो हम लोगों का भोजन है ही, और भोजन सबको ताजा मिल रहा है। ताजा भोजन की क्या विशेषता होती है? ताजा भोजन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो ताजा भोजन खाते हैं, बाबा हम लोगों कहता था, मधुबन वालों से जब मिलता था तो कहता था, चुल पर सो दिल पर, यह सिंधी शब्द है, चुल पर सो दिल पर, माना जो चूल्हा पर गरम गरम खाना बन रहा है, रोटी बन रही है, जो दिल पर बच्चे होते हैं वो साथ साथ एक तरफ बनता है दूसरी तरफ खाते हैं, बासी नहीं खिलाया जाता उनको, लेट किया नहीं खिलाया जाता है। तो आप बच्चे तो मधुबन वालों को तो चुल पर सो दिल पर हो, चूल्हे पर बैठे हो, गरम गरम भोजन बन रहा है, बाबा दादियां बांट रही हैं और आप लोग खा रहे हो। लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार की इतनी सब आत्माएं इस भोजन को एक साथ खाएंगी, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था, और वो सेवा बाबा ने मुझे ही दे दी। तो ड्रामा अनुसार ये पार्ट मिला, और लक्ष्य रखा कि चारों सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट हर एक को मालूम होनी चाहिए, किस लिए बाबा इतना पढ़ा रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है। और इसी मेहनत से कोई राजा ही प्राप्त कर लेता, और कोई दास दासी नौकर चाकर बन जाता है। द्वापर युग से जितनी राजाइयां बनी, राजाई घराने में जन्म हुए, उसका आधार रहा दान पुण्य। जिसने जितना दान किया, पुण्य किया, उसको अच्छी घर में, राजाई घर में जन्म मिला। लेकिन सतयुग और त्रेता की राजाई का आधार संगम की पढ़ाई है। संगम पर जिसने इस बाबा के महावाक्यों को यथार्थ रीति से समझा, उसकी ऑब्जेक्ट को समझा, एक है सब्जेक्ट और एक है उसका लक्ष्य के बाद उद्देश्य, जिसने उस उद्देश्य को समझा उसने ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। पढ़ लो मुरली, सभी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद इसके द्वारा इस सेंस में क्या मिला, हमारी जीवन क्या बनेगी, उसकी ऑब्जेक्ट के साथ जरूर, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट हमारे क्लियर होना चाहिए। अगर बाबा ने मुझे ज्ञान दिया, मान लो ज्ञान के सब्जेक्ट पढ़ाई, बहुत सारा ऊंचा ज्ञान है, बाबा कहता है नया ज्ञान है, नई दुनिया के लिए ज्ञान है, जो ज्ञान अभी तक नहीं दिया गया वो ज्ञान मैं तुम्हें देता हूं, और इस ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग और त्रेता में चलती है, ये ज्ञान संगम पर मिलता है और प्राय लोप हो जाता है। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, इसकी प्रारब्ध मिलती है। द्वापर और कलयुग में फिर जो ऋषि मुनि आते हैं, तपस्वी आत्माएं आती हैं, उनको टचिंग आती है, वो ट्रांस में जाती हैं या साक्षात्कार होते हैं, वो इसी समय की पढ़ाई को कैच करते हैं बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से, और उसको अपने शब्दों में लिखते हैं। और लिखते हैं तो समझते हैं, लोग आज कहते हैं महाभारत हुआ, रामायण हुई, ये हुआ, ये हुआ, लिखी कब गई है? तुलसीदास जी कब हुए? 1680। तुलसीदास जी 1680 में और लिख रहे हैं त्रेता युग की बातें। आप समझ सकते हो, कलयुग में बैठा हुआ व्यक्ति त्रेता युग की क्या दृश्य लिखेगा, कैसे लिखेगा? लेकिन लोग उसको इतनी भावना से, श्रद्धा से, सत्य वचन कह के माने जैसे ये सब घटा हुआ था, हुआ था। एक बार मैं कुरुक्षेत्र में गया, कहते भाई यहाँ अक्षौणी सेना क्या, यहाँ 10,000 भी लोग नहीं इकट्ठे रह सकते, कहाँ से अक्षौणी सेना आ गई होगी? लेकिन मान्यता ऐसी है, जो उसके पीछे लगे रहते, यही सत्य है, सत्य वचन महाराज। लेकिन बाबा ने हमें बता दिया, बच्चे संगम पर जो कुछ प्रैक्टिकल घटा है उसके ही शास्त्र बने हैं द्वापर युग में। और सबने, व्यास ने या दूसरे जो आए हैं संत या पवित्र आत्माएं उतरी हैं आकर के, उनको टचिंग आई है और कैच किया है, जितना वो कैच कर पाए उन्होंने लिखा है। लेकिन बाद में जो दूसरी संस्कृतियां आती गई, भारत के ऊपर अटैक हुए, वार हुए, उन्होंने हमारी संस्कृति को दबा दिया। लिखा उन्होंने कई चीजें ठीक थी, कैच किया था संगम की, लेकिन दूसरे धर्म आने लगे और दूसरे लोगों ने हमारी जो ओरिजिनल संस्कृति थी उसमें और मिक्स कर दिया या खत्म कर दिया। इसलिए जितने भी शास्त्र हैं, अभी बाबा कहता है इसके अंदर केवल आटे में नमक जितना सत्य रह गया। संगम युग पर बाबा ने जो पढ़ाया है, बहुत भाग्यशाली आप आत्माएं हो जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य हमारी पढ़ाई है। भगवानों वाच्य हमारी पढ़ाई है, लेकिन उसका कदर, उसकी कितनी वैल्यू, कई लोग हैं मुरली है ना, सुन लेंगे पढ़ लेंगे, ठीक है पढ़ी तो पढ़ी, नहीं तो नहीं पढ़ी। लेकिन मुरली हमारे जीवन को आधा कल्प के लिए श्रृंगार कर रही है, इतना श्रेष्ठ पद दे रही है, उसकी वैल्यू को समझो, उसके ऑब्जेक्ट को जरूर समझो। तो ज्ञान जो बाबा ने पढ़ाया, ज्ञान के अंदर आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, पुनर्जन्म का ज्ञान दिया, कर्मों का ज्ञान दिया, घर का ज्ञान दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, ड्रामा का पूरा ज्ञान दिया, चक्र कैसे रिपीट होता हो, बहु हर आत्मा कैसे अपना अपना पार्ट बजाती है, उसका क्या पार्ट है, कैसे एक का पार्ट दूसरे के साथ नहीं मिलेगा। अभी कभी भी मुरली आप सुनते हो, हम जब शुरू किया मुरली सुनना मधुबन में आए तो दीदी ने इसका मुझे रस बिठाया, और रस बिठाने के लिए कहा तुम अपनी डायरी ले आओ मेरे पास, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में डायरी पेन आपके हाथ में जरूर होना चाहिए। दीदी के हाथ में सदा डायरी पेन रही, एक मिनट भी वो डायरी पेन के बिना क्लास में नहीं होती थी। लिखना है कुछ न कुछ, पॉइंट्स क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, तो मेरी डायरी मंगाई, कहती देख इसके चार भाग करो, एक में ज्ञान की सब्जेक्ट लिखो, एक में योग के लिखो, एक में धारणा के लिखो, एक में सेवा के लिखो। साकार बाबा की मुरली में चारों सब्जेक्ट एक ही मुरली के अंदर कभी कभी होती हैं, कभी कभी कोई एक ही विशेष टॉपिक पर मुरली होती है, भाई कभी योग के ऊपर बहुत गहराई गहरी है, कभी धारणा के ऊपर है, कभी ज्ञान की लहरें हैं, और कभी सेवा के लिए बहुत सारी प्लानिंग आती है। तुम एक हफ्ता मुझे नोट करके दिखाना कि ज्ञान की पॉइंट्स क्या लिखी, योग के क्या लिखी, धारणा के क्या लिखी, ड्यूटी लगाई ऐसे। और ये करते करते कि भगवान ज्ञान सागर है, और उस ज्ञान सागर की ये ज्ञान की लहरें किस किस रूप में हमारे पास आई हैं, नोट किया हमने, ढेर खजाना हो गया। आज जो हमें क्लास कराना पड़ता है, कोई चिंतन करके आओ, बैठ करके विचार करो, कोई टॉपिक तैयार करो, अरे इतना पढ़ाया बाबा ने, इतना पढ़ाया अपने समान बना दिया सागर, सब कुछ भर दिया, अभी फिर से पढ़ने की क्या जरूरत रही। इसलिए इतना सब पढ़ाया, और वो पढ़ाई दिन रात यही रही, ज्ञान के सब्जेक्ट ये सब पढ़ता गया, विचार किया कि अगर बाबा ने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया, किस लिए दिया, आत्मा राजा है, इन कर्म इंद्रियों के वो मालिक है, इन कर्म इंद्रियों के अधीन आज जो हुए हैं, आज जो परवश स्थिति संसार में है, आप कहीं भी चले जाओ, कोई पाप कर्म करेगा, कोई गलत कर्म करेगा, अगर करने के बाद उससे बात करके देखोगे क्यों किया, मैं चाहता नहीं था, मेरे से हो गया, इतना आत्मा अधीन हो गई है कर्म इंद्रियों के, जो कर्म इंद्रियां आत्मा को अपने कंट्रोल में करके कर्म करा रही है, वो विकर्म हो रहे हैं, पाप कर्म हो रहे हैं। अगर आत्मा का ज्ञान किसी को मिला है और आत्मिक स्थिति का उसने अच्छा अभ्यास किया है, तो आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। अब उसका प्रैक्टिकल स्वरूप यह है कि अगर हम आत्मा मालिक हैं, तो मालिक आत्मा कभी भी इन कर्म इंद्रियों के गुलाम नहीं बन सकती, अधीन नहीं हो सकती, वो अधिकारी है। तो अधिकारी स्वरूप की स्मृति आत्मा का ज्ञान दिलाती है, और इससे हम अगर अधिकारी बने हैं तो माना हमने आत्मा के ज्ञान को समझा है। अगर कहते हम चाहते नहीं थे, गुस्सा आ गया, बोलना नहीं चाहते थे, बोल दिया, निकल गया, हो गया, सुन लिया, कर लिया, तो बाबा कहता है अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी अगर है तो करने के बाद कभी पश्चाताप नहीं करेगा, करने के पहले जरूर सोचेगा करें या ना करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाबा तो एक सेकेंड शांति से। ये जो संकल्प अंदर आ रहा है, बोलूं या न बोलूं, ये करूं या नहीं करूं, एक सेकंड विवेक से बात कर लो और फिर करो, कभी गलत नहीं होगा। तो आत्मा के ज्ञान ने हम सबको इतना शक्तिशाली बनाया कि हम एक एक कर्मेंद्रियजीत, विक्रमाजीत, प्रकृतिजीत बने। प्रकृति तीन चीजों की है, एक अपने संस्कार भी प्रकृति कहलाते हैं, नेचर इसको हम कहते हैं, हमारी नेचर ऐसी है, हमारा स्वभाव ऐसा, वो भी एक नेचर प्रकृति है। ये पांच तत्वों का शरीर बना हुआ, ये भी एक प्रकृति है, और पांच तत्वों के आधार से सारे ग्लोब पर जो भी कार्य चल रहा है, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षी, सब पांच तत्वों पर आधारित हैं। अगर प्रकृति का एक तत्व भी अप डाउन हो जाए, डिस्टर्ब कर दे, तो मानव जीवन ही नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन इस प्रकृति की मालिक आत्मा है, जिसने आत्मा की स्थिति को, आत्मा के स्वरूप को पहचाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, सतयुग और त्रेता के अंदर कोई भी आत्मा परमात्मा अभिमानी नहीं है, उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी होने के कारण प्रकृति उसकी दासी है, प्रकृति उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो संकल्प करेगा, प्रकृति उसके आगे सब कुछ हाजिर कर देती है। तो हम सब आत्मा के ज्ञान को यथार्थ समझ करके प्रकृति जीत बन जाए, कर्मेंद्रिय जीत बन जाए, इसके लिए ज्ञान है। नहीं तो आत्मा का ज्ञान सुनाते रहो लोगों को, हम सुनते हैं सुनाते हैं, अगर हम कर्मेंद्रिय जीत नहीं बने, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर हमने अपना नियंत्रण खो दिया, तो हम आत्मा का ज्ञान को क्या समझा है। इसलिए बाबा कहते हैं, ज्ञान की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट है अधिकारीपन की स्थिति। और दूसरा, अगर ज्ञान को यथार्थ समझा है, तो ज्ञान नाटक के विषय में जो ज्ञान मिल रहा है कि सृष्टि नाटक 5000 साल का एक बार चक्र लगाता है, और जब समापन पर आता है तो वापस चलने के लिए बाबा आते हैं ले जाने के लिए। एक दिन बहुत प्यार की, बाबा के दो शब्द थे मुरली के अंदर, 4-5 दिन पहले, बच्चे मैं आप बच्चों को अपने साथ वापस ले जाता हूं, लेकिन आप बच्चे मुझे वहां ही छोड़ करके वापस आ जाते हो। कभी कभी ऐसे ऐसे प्यार के शब्द मिलते हैं बाबा की मुरली में, कितना प्यार से बाबा बोल रहा है कि बच्चे मैं ले तो जाता हूं साथ में, लेकिन साथ में ले जाने के लिए कितनी शर्त है। साथ चलना है तो समान बनना पड़ेगा, साथ चलना है तो संपूर्ण पावन बनना पड़ेगा, ऐसे तो साथ नहीं जाएंगे। इसलिए हम सबको अगर ज्ञान मिला है कि अब घर जाने का समय है, ये नाटक पूरा हो रहा है, कलयुग का अंतिम समय है, सतयुग का सीरियल ये फिर से रिपीट होगा, नाटक नए सिरे से शुरू होगा, तो ये जो ज्ञान बाबा ने दिया है, इसकी ऑब्जेक्ट क्या हुई कि मुझे किसी भी कर्म बंधन में अभी नहीं बंधना है। जो हमने इतने समय से हिसाब किताब बनाए हैं, जिन जिन बंधनों में हम बंधते आए हैं, चाहे देह में बंधे हैं, चाहे देह के संबंधों में बंधे हैं, चाहे देह के पदार्थों में, सुख साधनों में फंसे हुए हैं, चाहे संस्कारों में फंसे हुए हैं, अगर ज्ञानी तो आत्मा है तो वो निर्बंधन होनी चाहिए, कहीं नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। अगर पुराने बने हुए हिसाब किताब हैं, तो ज्ञान और योग की शक्ति से, बाबा की याद से, उनकी मदद से उनको कैंची लगा दो, काट दो। इसलिए हम ज्ञान सुन रहे हैं, मुरली इसलिए सुन रहे हैं कि कहीं भी कोई नया हिसाब किताब न बन जाए। मुरली सुनते सुनते कई लोग नए हिसाब किताब भी बनाने शुरू कर देते, बहन जी बड़ा अच्छा मुरली सुनाती हैं, ये तो मेरी माँ जैसी लगती हैं, ये तो मेरी बहन जैसी लगती हैं, कहाँ बाबा, कहाँ सुप्रीम टीचर, और कहाँ उस आत्मा के अंदर वो अटक गया जाके, लटक गया जाके, बंधन बना लिया हिसाब किताब। ध्यान देना, किसी भी देहधारी को अब समय आ गया है, बाबा कहते ना थोड़ा छोटा सा परिवार, माता पिता है, बाप दादा है, आपस में तुम भाई बहन हो, इसके आधार से सतयुगी परिवार की रचना हो रही है, इसलिए वहां एक ही बच्चा है, परिवार छोटा है, लेकिन संगम पर छोटा परिवार है हमारा या हमारा बहुत बड़ा परिवार है, ये हैं ये हैं ये हैं, एक तरफ बेहद के परिवार के हम सब सदस्य हैं, लेकिन संबंधों के आधार से कहीं पर भी अगर कोई आत्मा अपने विनाशी संबंध बढ़ा रही है, माना उसने ज्ञान को यथार्थ समझा नहीं है। ज्ञान को यथार्थ समझा है, आए अकेले, जाना अकेले, कोई भी मेरा नहीं। बाबा कहता बच्चे अकेले बन करके अकेले में मुझे याद करो। मनोहर दादी कहती थी 5 केला रोज खाओ, अकेले बन करके अकेले में बाबा को याद करो, अकेले हो करके एकांत में बैठ करके अकेले घर जाने की तैयारी करो। तो अब वो समय है कि कोई भी नया कर्म बंधन बनाना नहीं, जो बने हैं उनको एकांत में बैठ करके चेक करो। कैसे पता चलेगा बना हुआ है अभी तक? जब योग करोगे, जब बाबा की याद में बैठोगे तो बुद्धि वहां ही जाएगी जिधर बना हुआ है, जिधर हिसाब किताब है, जिधर कोई तार जुड़ी हुई है उधर ही जाएगी बुद्धि। इसलिए बाबा कहता है बच्चे एकांत में बैठ करके अपने विचारों को, अपने संकल्पों की गति पर ध्यान दो। अगर बंधन है तो खींच रहा है, और अगर निर्बंधन है तो एकदम लाइट हल्का बैठा है, उड़ गया। अगर किसी के ऊपर बोझ है, कर्जा चढ़ा हुआ है, वैसे भी कहते कर्ज सबसे बड़ा मर्ज है, इसलिए आप लोग कर्ज नहीं लेना किसी से। इतने समय से आत्मा के ऊपर कई चीजों का कर्ज चढ़ता गया और उस कर्ज के कारण योग नहीं लग रहा है। इस कर्ज को हमें चुकतू करना है बाबा की याद से, बाबा की शक्ति लेकर के। जो कर्जे हैं हिसाब किताब के, वो योग के अग्नि से जला देने हैं, भस्म करने हैं। अब इसके लिए एकांत चाहिए, अकेलापन चाहिए, एकदम बैठ जाओ ऐसे। मैं कभी कभी ऐसे बैठ जाता हूं, बस कुछ नहीं मेरा है संसार में। भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, चमकते हुए सितारे को देखो, चले जाओ बाबा के पास। जो बंधन होंगे आपको रियलाइज हो जाएंगे, महसूस होंगे ये बंधन है, इस आत्मा की याद आ रही, इस विशेषता इसकी याद आ रही, इसके गुण अच्छे लग रहे हैं, या इससे नफरत है, घृणा है, ये हिसाब किताब बना रहे हैं हम। किसी से भी हमने घृणा कर ली, किसी से हमारी नफरत हो गई, हिसाब किताब बनने लगा। ज्ञान कहाँ है? ज्ञानी तो आत्मा हर एक के पार्ट को बहुत साक्षी होकर के देखती है। बजाने दो उसको जो बजा रहा है, मुझे उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। इंटरफेयर किया, उससे घृणा रखी, उसकी ग्लानी किया, उसकी बातों को चारों तरफ फैला दिया, माना हमने उसके साथ अपना हिसाब किताब बना लिया। अब संगम का समय, ज्ञान कहता है, ज्ञान की सब्जेक्ट कहती है बंधन मुक्त हो जाओ, सब बंधनों से मुक्त। एक सेकंड में बैठो और बाबा के पास चले जाओ, देखना उड़ करके उड़ते हैं या कोई ना कोई रस्सी खींच लेती है। फिर है योग। मूल सब्जेक्ट योग ही है, जिससे आत्मा पावन बनती है, सतो प्रधान बनती है, पाप दग्ध होते हैं। ज्ञान उसका फाउंडेशन है। ज्ञान को यथार्थ यूज किया है, समझा है, तो योग सहज लगेगा, और योग सहज लगेगा तो आत्मा की जो कट है, मैल है, जो उसके अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, विकार हैं, संस्कार के रूप में घुस गए, वो सब धीरे धीरे साफ होते जाएंगे। अनुभव होगा बड़ी स्वच्छ आत्मा है, पवित्र आत्मा है, न किसी से नफरत है, न किसी से बैर है, न किसी से प्रभाव है, बिल्कुल स्वच्छ है, पवित्र है। उस पवित्रता में 5 विकार हैं, इसलिए बहुत ध्यान देना कि हम सब आत्माएं इतनी पावन बन जाएं जो कोई भी प्रकार का विकार आत्मा को टच न करे। केवल एक काम विकार नहीं है, क्रोध की अग्नि है, क्रोध नहीं करते हैं तो आवेश में आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, अब शब्द बोल देते हैं। ये वाणी पर हरेक का बहुत ध्यान होना चाहिए। संकल्प चलो अंदर अंदर चल रहे हैं, उनको हमने चेक किया, चेंज किया, लेकिन जब हम वाणी में आते हैं तो वाणी का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। कल मैं एक जगह टोटका एक पढ़ रहा था, सुनाता हूं। एक पिता के 2 बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे पढ़ाई के अंदर, साइंस पढ़ रहे थे, और साइंस में उन्होंने पढ़ा ग्रहों के बारे में, चांद सितारों के बारे में, पढ़ करके बड़े खुशी से, बड़े नशे से पिताजी के पास आए। पिताजी को कहने लगे, पिताजी ऐसे ऐसे हमने पढ़ा, ग्रह हैं, ये हैं। अरे कहता, अरे गधे, तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, सारी मनी वेस्ट कर दी, इनसे क्या लेना देना तेरा। अब बेचारे जो इतना उमंग उत्साह से आए थे, एक ही शब्द निकला उनका बाप का, उनकी खुशी गायब हो गई, उनका नशा खत्म हो गया, एकदम मुंह लटक गया, चले गए वापस। दूसरे दिन आए वही बच्चे फिर से बाप के सामने। बाबा कहता, उसका बाप कहता, अरे बच्चे तुम कितने अच्छे हो, तुमने तो अपने कुल का नाम रोशन कर दिया, इतनी अच्छी पढ़ाई किया। बस दो शब्द ही उसके जीवन को बदलने वाले थे। एक तरफ उसकी नफरत किया, घृणा के बोल बोल दिया, और दूसरे दिन आए उसकी महिमा कर दी, वो फिर से खुशी में आ गए, फिर से प्रफुल्लित हो गए। वाणी कितना बड़ा कार्य करती है, अगर इस वाणी पर हम कंट्रोल कर लें तो कितने लोगों की जीवन बना सकते हैं। अगर उसी तरह से शब्द बोल देते हैं, तुम कैसे टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम क्या कर रहा है। दादियों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया। आज जो हम सबके इतने बड़े संगठन को तैयार किया, उसके पीछे केवल एक ही ध्यान रखा कि मुझे सबको सम्मानजनक बोल ही बोलने हैं। जब भी गए, कुछ भी किया, कोई थोड़ी बहुत सेवा किया, और जाकर के हम पहुंचे उनके पास, अरे तुमने तो आज बहुत अच्छा किया, कितना अच्छा किया। दादी तो ऐसे चढ़ा देती थी, हम कहते जैसे चने के झाड़ पर चढ़ा रही हूं। कहती थी नहीं भैया, तुमने बहुत अच्छा किया, मैं भी बहुत इतना नहीं कर सकते जितना तुमने किया। क्या है, दो शब्द महिमा के, दो शब्द प्यार के बोल दिए, और उमंग आ गया कि इससे और अच्छा करूं, इससे और अच्छा करूं। सीखे कैसे, अगर वो कह देती अरे क्या लिखा है छोड़ दे, किस काम का है, एक शब्द काट देती तो दूसरे दिन मेरा उमंग उसे ही खत्म हो जाता। कुछ भी लिख करके ले गए, कैसी भी बात लिख करके ले गए, अगर करेक्शन करनी है तो करते हैं, ऐसे नहीं करते, लेकिन एक बार जरूर महिमा करेंगे, तूने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है, लेकिन मेरा विचार है यहां पर एक शब्द और लिख दो, ये और ऐड कर दो। कितना अच्छा समझाने का तरीका। लेकिन पहले उसको निग्लेक्ट कर दिया, पहले उसको काट दिया, उसको डिस्टर्ब कर दिया, और फिर आप कितना भी सिखाने की कोशिश करो सीखेगा ही नहीं। इसलिए सब ध्यान देना, वाणी बड़ी अनमोल है। अगर हम सबके साथ मिलकर के चलकर चलना चाहते हैं, संगठन से सेवाएं लेना चाहते हैं, तो वाणी पर बहुत कंट्रोल चाहिए। सिर्फ संकल्पों की पवित्रता नहीं है, मन वचन कर्म की पवित्रता है। अगर वाचा के अंदर मधुरता, नम्रता, सरलता नहीं है, सम्मानजनक बोल नहीं है, तो उसको भी पवित्र नहीं कहेंगे, भले आप कितनी भी पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की बातें करो। ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत हमारा है, पहला नियम है, और उसके लिए हम संकल्प भी पवित्र और शुद्ध बनाएं, ध्यान दें, लेकिन अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल चाहिए। कई इसमें बहुत लूज हैं, अलबेले हैं, गुस्से में बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं जो नहीं बोलने चाहिए, और उससे संबंध बिगड़ जाते हैं, सेंटर टूट जाते हैं, बहनें नहीं टिक रही हैं सेंटर्स पर। क्यों, बड़ी बहन ने इसने ऐसा बोल दिया, बस दिमाग खराब हुआ, चली गई। इसलिए हम सब इस बात को ध्यान दें, बाबा हमें पढ़ा रहा है आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने के लिए, और उसके लिए योग सिखा रहा है। अगर मैंने योग यथार्थ किया है तो हमारी मन की जितनी शुद्धि है उतनी वाणी भी बहुत शुद्ध है, और कर्म ऐसे हो रहे हैं जो कर्म दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, कर्म से गुणों का दान हो रहा है। ऐसे नहीं जो कर्म हम कर रहे हैं ठीक है, कोई देख थोड़ी रहा है, भावे तो किसी कोने में बैठ करके तुम कर रहे हो। अभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां जहां भी कुछ करते हैं वहां पर सारे विश्व की नजर होती है। एक दिन एक बहन को ऐसे ही बेचारी, एक साध्वी थी, उसको ज्ञान दिया बहनों ने, और प्यार से उसको अपने सेंटर की तरफ ले जा रहे थे गाड़ी पर, शिव बाबा का स्टिकर लगा था गाड़ी पर, और वहां पर अफवाह फैल गई, वो साध्वी किसी के साथ भाग गई, और भाग गई तब गाड़ी पकड़ी गई तो ब्रह्मा कुमारी की गाड़ी है। कहां से आई गाड़ी, उसमें शिव बाबा का स्टिकर लगा है। आज इतनी लोगों की नजर रह गई, अगर एक गाड़ी पर भी शिव बाबा का स्टिकर लगा है तो लोग की बुद्धि में यह रहता है ब्रह्मा कुमारियों की गाड़ी है, और लगा तो हम सबके ऊपर रहे हैं। माना एक एक कर्म पर हरेक आत्मा की नजर है, वो जानते हैं लोग क्या कर रहे हैं। तो कर्म से गुणों का दान हो, ऐसे कर्म किए जाएं जिससे लोग सीख जाएं कि हमें क्या करना चाहिए, तब कहेंगे यथार्थ योग है। योग की ऑब्जेक्ट है आत्मा संपूर्ण पावन बनती जाए, और धारणाएं तो हमारे नई दुनिया का फाउंडेशन है। अव्यक्त होने के बाद बाबा ने विशेष मूल्यां चलाई हैं हमारी धारणाओं में संपन्नता लाने के लिए, संपूर्णता लाने के लिए। साकार में बाबा ने सब सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ाई, लेकिन अव्यक्त रूप में संपन्न बने बाबा, और जैसे खुद बने ऐसे मेरे बच्चे बन जाएं। आप देखो, एक बार मैंने योग की सारी टॉपिक निकाली और 12 मास तक इस साल भी योग की टॉपिक चला रहे हैं, अव्यक्त सारे में पत्र पुष्प के अंदर टोटल योग। योग की कितनी गहराइयां हैं, योग की कितनी स्टेजेज हैं। केवल योग आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना नहीं है, एक लौलीन स्थिति है, डबल लाइट स्थिति है, बीज रूप की स्थिति है, अव्यक्त स्थिति है, फरिश्ता स्थिति, बहुत सारा ज्ञान योग का बाबा ने दिया है। अगर आप योग के ऊपर ध्यान देंगे तो योग के सब्जेक्ट में अगर पास हो गए तो उसकी ऑब्जेक्ट है आत्मा पावन हो गई, और धारणाओं में अगर आपने ध्यान दिया, यथार्थ धारणाएं आपने की, तो धारणाओं के लिए कुछ सहन किया, कुछ सामना किया, क्योंकि धारणाओं के लिए तो धर्म के लिए सहन करना पड़ता है। सत्य धर्म की स्थापना के लिए धारणाएं हैं। जितनी खान पान की शुद्धि है, ब्रह्मचर्य की पालना है, श्रेष्ठ संघ की बात है, इन सब के पीछे उद्देश्य ये है, ऑब्जेक्ट ये है कि एक सत्य धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं हम सब। उस आदि सनातन देवी देवता धर्म के लिए सब नियम है, और उन नियमों को जिसने यथार्थ रीति से पालन किया है उस घराने में जाकर के उसका ऊंच पद है। नहीं करोगे धारणा है तो बाबा क्या कहेगा, ठीक है तेरी तकदीर, बाबा तो पढ़ा रहा है सिखा रहा है, जिसने किया है उतना उसने पाया है। तो धारणाएं जो हैं, जितनी धारणाएं हमारी हैं, अगर उसमें हम दृढ़ हैं, पक्के हैं, तो समझ जाओ कि हमारा ऊंचे से ऊंचा पद अवश्य है। और सेवाएं हैं राज्य की स्थापना के लिए। इतना बड़ा राज घराना बन रहा है तो बाबा कहता राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी पड़ेगी। अगर आपने संदेश ही नहीं दिया, सेवा ही नहीं की, तो किस पर राजी करोगे। इसलिए सेवा की सब्जेक्ट सतयुग की राजाई की है, और उसके लिए समय अनुसार अभी हम सबको बाबा कह रहे हैं, वाचा सेवा आपने बहुत कर ली, कर्मणा सेवा भी कर ली, लेकिन अब समय आ गया है अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा अच्छे वाइब्रेशन फैलाने का, एक स्थान पर रहते हुए पूरे विश्व कल्याण का, प्रकृति को पावन बनाने का। बहुत शुभ संकल्प लेके बैठो जिससे हमारे अच्छे वाइब्रेशन इस दुनिया का परिवर्तन करें। ये सेवा बहुत विशेष सेवा है, विश्व की सेवा है, और हर एक कर सकता है, चाहे छोटा है बड़ा है, बीमार है बुजुर्ग है, सब ये सेवा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मन बहुत शक्तिशाली चाहिए, मन बहुत शुद्ध चाहिए, एकाग्र चाहिए। तो ये चारों सब्जेक्ट बाबा ने पढ़ाई, और पांचवी जो हमारी सबकी चलती है, भोग लगाना है, भोजन का भोग लगाना, ये करना और ब्रह्मा भोजन करना, साथ में खाना पीना पिकनिक करना, इससे एक आदर्श फैमिली की स्थापना हो रही है, सतयुगी फैमिली की स्थापना हो रही है। इसलिए बाबा की मुरलियों को इस ढंग से पढ़ो, सुनो, धारण करो कि हम सब संगम पर निर्बंधन बने, संपूर्ण पावन बने, और आने वाली दुनिया के लिए संपूर्ण धारणाओं को अपनाएं और सेवा की सब्जेक्ट में आगे बढ़े। तो अगर इन पर हमारा ध्यान है तो समझो मुरली को यथार्थ हमने समझा है। अगर मुरली हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता, माना एक कान से सुनते हैं दूसरे से बह जाता निकल जाता है, तो अब समय अनुसार हम देख रहे हैं बहुत वैल्यू बढ़ी है मुरली की, पहले इतनी नहीं थी। अभी तो सुनने के लिए पढ़ने के लिए इतने सब साधन होते हुए भी दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ती जाती है। प्रिंटिंग में कितनी जा रही है, ऑनलाइन कितनी जा रही है, 18 भाषाओं में तो इंटरनेट पर रखी हुई है, और भी कई भाषाएं भी नई नई, गुजराती भी आ गई है, अभी बंगाली भी आ गई है, मराठी भी आ गई, अपने भारत की कितनी सारी भाषाएं हैं। तो ये सब भाषाएं बाबा की जो मुरलियां हैं ये सब कर रही हैं बहनें, बहुत अच्छा सहयोग दे रही हमें, और वो सब इंटरनेट पर आ रही हैं, रखी जा रही हैं। तो सारे विश्व के लिए ज्ञान है, और नया ज्ञान है नए विश्व के लिए है। कितना भी हम ज्ञान सुनते आए शास्त्रों का, बाबा कहता है बच्चे उसमें केवल आटे में नमक जितना बचा है सत्य, बाकी सब मिक्स हो गया। तो इसलिए सत्य ज्ञान दाता द्वारा मिलता है, और इसी सत्य ज्ञान द्वारा सत्ययुग की स्थापना हो रही है। तो हम सब ध्यान दें, एक दिन की भी मुरली, उस दिन बाबा ने कहा मैं पढ़ाने वाला थकता नहीं हूं, तुम पढ़ने वाले क्यों थक जाते हो? बाबा नहीं थकता है, रोज इतनी दूर से आके पढ़ाता है, रिवाइज करा रहा है, भले पढ़ाई पूरी हुई है लेकिन अभी भी पेपर नहीं आया है, रिवाइज चल रही है, इसलिए रिवाइज को अच्छी तरह से रिवाइज करके अपने जीवन में धारण करना है। रोज की मुरली पढ़ो, ये सत्य वचन है, ऐसे नहीं हमने तो कई बार पढ़ लिया है, भले कई बार तुमने पढ़ा है, लेकिन आज की मुरली मेरे आज की परिस्थितियों का हल है। जो आज हमारे सामने कोई पेपर आने वाले हैं, आज की दुनिया की हालतें हैं, अगर उसी दिन की मुरली आप ऐसे उठा के देख लो, उसमें उसी बात का हल मिल जाता है। और कईयों का अनुभव है कि आज बाबा ने ये कहा और ये आई बात, हमने इसको ऐसे पार कर लिया। इसलिए रोज की मुरली, कोई भी ब्राह्मण आत्मा, कई जगह पर शाम को मुरली सुनने जाते हैं, मैं कहता हूं ठीक है नियम पालन कर रहे हो, लेकिन सारे दिन की दिनचर्या का जो फाउंडेशन है सवेरा, उस सवेरे सवेरे ज्ञान से बुद्धि को भरपूर करो। ये सकारात्मक चिंतन का खजाना है, और जिसके पास सकारात्मक चिंतन है, कितनी भी नेगेटिव बातें आएंगी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर तो नेगेटिविटी भरी पड़ी है। आज चैनल खोल के देख लो, अखबार पढ़ लो, सारी नेगेटिव बातें जितनी होती हैं। एक दिन मेरे को, मैं डेलास में 3-4 दिन पहले क्लास कर रहा था, अमेरिका में ऑनलाइन क्लास चल रहा था, मेरे से क्या प्रश्न पूछा, आजकल भारत की हालत बहुत खराब है, आप लोग सेफ हैं? मैंने कहा किसने कहा खराब है, हम लोग तो इतना अच्छे बैठे हैं। तो मैं फोन पर फोन की बात सुना रहा था कि जब ये बात उन्होंने पूछी तो मैंने कहां से सुना आपने कि हमारे भारत की हालत खराब है? बोले टीवी में तो यही सब आता है, हमने टीवी वाले क्या करते हैं, मीडिया वाले क्या करते हैं, मान लो दिल्ली में एक जगह पानी भर गया तो ऐसे दिखाएंगे जैसे पूरी दिल्ली डूब गई, क्यों तो न्यूज जा रही है, एक कोने की न्यूज, कहीं एक जगह पर कोई मर्डर हो गया, एक जगह कोई भूकंप आ गया, एक जगह कुछ बाढ़ आ गई, अब राजस्थान में एक जगह बाढ़ आई है, और अगर वो देख रहे हैं न्यूज तो सोचते राजस्थान में बाढ़ आई माना माउंट आबू बह गया, और यहां तो पानी पीने के लिए भी नहीं है, राजस्थान में आई ना बाढ़, अब राजस्थान में कहां आई वो तो देखते नहीं, राजस्थान कितना बड़ा है। तो इसलिए बाहर जब न्यूज जाती है और विदेश देखता है तो समझता है ये हो रहा ये हो रहा, वो आने से डरते हैं, कहते हम कैसे जाएंगे, ऐसे हो गया ऐसा हो गया, यहां कुछ नहीं है। ज्यादा इन बातों में, संसार समाचार की बातों में नहीं जाओ, नहीं इसमें जाओगे तो उलझ जाओगे, जितना जरूरी अपने काम का उतना देखो, बाकी अपनी बुद्धि को उलझाओ नहीं, बाबा की मुरलियां पढ़ो। हम लोगों की और कोई पढ़ाई है ही नहीं, जो आज कितने भी क्लासेज कराने हो कोई किताब लेके आते हो क्या, कहानी की पढ़ के ये कहानी सुना दिया ये सुना दिया, कई तो इसी के पीछे अपना टाइम गंवाते हैं, हम बाहर की कहानियां सुना के क्लास कराएंगे? आप सब ध्यान दो, बाबा की मुरली इतनी अच्छी है, जितना समय मिले, हमारी दादियां 5 बार 10 बार जब समय मिलता था, बड़ी दादी के हाथ में देखो जब मुरली, जानकी दादी के हाथ में जब जाओ तब मुरली, और कुछ पढ़ने का है ही नहीं, मुरली पढ़ रही, रात को नींद खुल गई अपना लैंप जलाया मुरली पढ़ना शुरू कर दिया, इसी से वो इतनी विशाल बुद्धि बन गई, इसे तो राजा ही प्राप्त कर ली। और हम लोग इधर की किताब पढ़ेंगे उधर की किताबें पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे और बुद्धि के अंदर बहुत सारी बातें भर जाती हैं, फिर बाबा दूर हो जाता है, सत्य बातें अलग हो जाती है। इसलिए अटेंशन देना, मुरली हमारा भोजन है और मुरलीधर से प्यार माना, मुरली से जरूर प्यार होना चाहिए, ठीक है? ओके, ओम शांति।
ओम शांति। किन्हीं का क्वेश्चन आंसर, किसी को कोई प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं, आइए। कोई है? सब समाधान हो गया प्रश्नों का? भाई जी मुझे कहा था कि मुरली के कुछ प्रश्न, तो
आज
जी आज की मुरली में जैसे भाई साहब जी आपने जो ये बात कही ना कि मुरली के अलावा कोई भी हमारा गाइड नहीं है, तो जो आज इतना व्हाट्सएप और 4G इसमें इतनी सारी चीजें, तो इनसे कैसे बचे, क्योंकि ये ऐसे कहते जैसे भोजन जो है नमक मिर्च वाला जैसे ऐसा हो गया है, मीन्स कहानियां किस्से और सब, तो इनसे बचे कैसे, और मुरली में जो रस और मुरली का मनन कैसे बढ़ाएं, क्योंकि मुरली सुबह सुनते हैं और उसके बाद दिन भर उसका मनन कैसे हम बढ़ाएं?
ऐसा है कि बिना मनन के शक्ति नहीं बन सकती। अगर कोई भोजन आपने खाया है और आपका हाजमा ठीक नहीं है, हजम नहीं किया, तो शक्ति नहीं बनती, खून ही नहीं बनेगा। इसलिए जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, भोजन को पचाने के लिए उसको धीरे धीरे चबा के खाओ, हजम करो, शक्ति बनेगा, खून बनेगा। बाबा की मुरली को हम सुनते हैं, सिर्फ ऐसे ही न सुन लें, हम कई विधियों से सुने, नए नए रूप से सुने, रस आएगा। एक जैसी मुरली चल रही है, हम सुन रहे हैं नियम पूर्वक, कई तो मुरली ऐसे चलती है जैसे लोरी चल रही है, माँ सुना रही है और बच्चे सो रहे हैं ऐसे। लोरी जैसी मुरली होती है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। सुनाने वाले को भी इंटरेस्ट रहना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ऐसा नहीं हो जाए जो मुरली की जगह पर मुरला चलने लगे। कई सेंटर्स पर बहनें सुनाती हैं और सुनाते सुनाते उसके बीच में सारी कहानियां, सारी बातें जो उनको कहनी होती वो कह देते। इसके लिए कईयों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता। मैं तो अपनी बहनों से ही कहता हूँ, बाबा की मुरली सीधी सीधी प्यार से पढ़ो, प्यार से सुनाओ। जो स्पष्ट नहीं है उसको भले थोड़ा स्पष्ट करो, लेकिन अपनी एडिशन उसमें नहीं करो, जिससे सामने जो बैठे हैं उनको रस आए कि बाबा क्या कहना चाहता है। कई बार जो सुनाते हैं ना, वो सुनाने वाले बहुत मिर्च मसाला लगाते हैं और उसके कारण सुनने वाले बाबा ने क्या कहा पता नहीं चलता। तो थोड़ा ध्यान देना। अगर मान लो क्लास के बीच में आपकी कोई बात नहीं समझ में आ रही है और आपको लगता है इससे तुम बोर हो रहे हैं, भारी हो रहे हैं, तो मुरली को एक बार अपने पास घर में जरूर पढ़ो। सुनने के साथ मैंने देखा, सुनता हूं मैं भी तीन बार दो बार, लेकिन सुनने के समय कभी कभी बुद्धि इधर उधर हो जाती है, बात खिसक जाती है, बाद में याद करना पड़ता है क्या निकल गई बात। लेकिन अगर एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद आपका ध्यान जाएगा कि बाबा ने ये बातें कही हैं इस पर। और चार पांच बातें अंडरलाइन करो, ज्यादा नहीं, चार पांच मुख्य बातें। तकदीर कैसे बनाई, उसकी तस्वीर क्या है, कितनी श्रेष्ठ तस्वीर बनी है, ऐसे कुछ प्रश्न अपने आप से पूछ करके। अगर आज दादी जी ये मुरली सुनाती तो मुझे बुला के क्या कहती, सतयुग की तकदीर बनाने के लिए संगम पर कौन सी विशेषताएं मुझे धारण करनी है, 15-20 पॉइंट लिख के ले आओ। अगर हमारे को होमवर्क मिल जाइए तो क्या होगा, बुद्धि उसी तरफ चलेगी। और मैं हमेशा ध्यान देता हूं, इस मुरली पर मैं पेपर लेता हूं अपने ग्रुप का, करीब 50-60 भाई हैं, उसे 150 लोग देते हैं पेपर शांतिवन में, और वो सभी इस मुरली को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद कुछ एक बातें मनन चिंतन के लिए निकालेंगे, वरदान से ले लो, स्लोगन से ले लो, कोई अच्छी बात लगी उस पर लेकर के उस पर मनन को लिखो। अगर लिखने की आदत पड़ गई ना तो वो खजाना अपना हो जाएगा। मैं क्या करता था, जब मुरली सुन लेता था, मुरली के समय मैं इतने नोट्स नहीं लेता, लेकिन मुरली की दो चार बातें अंदर ले करके फिर नक्की लेक का राउंड लगाया, चक्कर लगाया, विचार उस पर चलता रहा, कैसे चक्कर पूरा हो पता नहीं। और फिर जब एकांत में बैठे तो मुरली की वही बातें जो मनन चिंतन किया वो लिख दिया, तो उससे हमारा वो खजाना अपना हो गया। और जब कभी किसी को सुनाना है या कोई भी बात ऐसी आ गई तो जैसे हमने वो बातें की या पढ़ लिया, याद आई, उसको हम सहज पार कर लेते हैं। वही विधियां हैं, युक्तियां हैं। मुरली क्या है, बाबा ने कहा श्रीमत क्या है, बाबा का हाथ क्या है, श्रीमत ही है। हर एक ब्राह्मण के सिर पर बाबा का हाथ है, लेकिन वो स्थूल हाथ नहीं है, वो श्रीमत का हाथ है। अगर श्रीमत सिर माथे है तो माना आपके ऊपर बाबा का हाथ है। तो श्रीमत क्या कह रही है, श्रीमत अमृत वेले के लिए क्या है, मुरली के लिए क्या है, भोजन के लिए क्या है, संघ के लिए क्या है, हर बात की श्रीमत मुरली के अंदर है। उसको यथार्थ रीति से समझ करके नोट करो, चिंतन करो और उसको स्वरूप में ले आओ, तो ये आपका खजाना अपना हो जाएगा।
इसके बारे में जान भी लिए, मान भी लिए, अब स्वरूप कैसे बने, बहुत भाई बहनी का प्रश्न रहता। स्वरूप
बनने के लिए अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास के बिना स्वरूप नहीं बन सकते। जैसे आत्मा का ज्ञान बताया ना, ऐसे ही मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं, ये अभ्यास करना पड़ेगा तभी स्वरूप बनेंगे। जब कोई काम करो तो पहले एक सेकेंड, मैं आत्मा इस हाथों के द्वारा ये कर्म कर रही हूं, मैं इस मुख से बोल रही हूँ, मैं इन आँखों से देख रही हूँ, अभ्यास करेंगे, यही अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, तो ये अभ्यास आपका वो स्वरूप बना देगा। आप बोलेंगे, मिलेंगे, देखेंगे, ये सब आत्माएं हैं, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का ज्ञान पढ़ना नहीं है, सुनना और सुनाना नहीं है सिर्फ, लेकिन चलते फिरते कर्म के अंदर उसको यूज करना है। यूज करेंगे तो स्वरूप में आ जाएगा। कोई भी बात जो आप दूसरों को बता रहे हो उसको पहले प्रयोग करके देखो। जैसे हम कहते हैं आत्मा बाबा की याद से पावन बनती है, उसके विकर्म विनाश होते हैं। और मैं 25 साल से योग कर रहा हूं, मेरे विकर्म विनाश हुए हैं। विकर्म विनाश हुए तो इसकी क्या निशानी है? मेरे संस्कारों में परिवर्तन आया है। अगर संस्कार वैसे ही चल रहे हैं, माना हमने योग तो जरूर किया लेकिन यथार्थ विधि पूर्वक न करने के कारण हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। ये जितना ज्ञान है, जितनी योग की बातें हैं, वो सब हमारे परिवर्तन के लिए हैं। अगर परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, माना ज्ञान स्वरूप में नहीं आया है। इसलिए जो क्या ज्ञान की बातें हम सुन रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, जब मेरे सामने कोई ऐसी बात आती है उसको हम प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने के लिए कर्म में आए। कर्म में आएंगे तो स्वरूप आज बन जाएंगे। आज ऐसे देखो, कई जगह पर आज अचानक लोग शरीर छोड़ रहे हैं। कई माताएं हैं जिनके बच्चे खुद बैठी हैं, उनके सामने उनका बच्चा चला गया। उन्होंने ये बात पहले से पढ़ी है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो एक पार्ट पूरा करके दूसरे शरीर में जाती है, जिसका जितना समय जिसके साथ हिसाब किताब है उतना समय वहां रहती है, पक्का किया अगर। तो ऐसा पेपर जब आ गया तो लोगों के कहने के अनुसार दुखी होकर के रोए, चिल्लाए, तड़पे नहीं, चुप हो जाते, शांत हो जाते। ये इस आत्मा का मेरे साथ इतना ही पार्ट था, ये हिसाब किताब था। माना उसने उस ज्ञान को समझा है और उसने अपने स्वरूप से दिखाया है। अगर उस समय आपने अपने स्वरूप से दिखा दिया तो ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को लगेगा कि ये ज्ञान जो इनके पास है ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, जो ऐसी परिस्थिति को भी इस माता ने इतनी सहज रीति से पार कर लिया, नहीं तो बहुत बड़ा पेपर है ये। तो पेपर में पास हो गए, माना आपने इस ज्ञान को स्वरूप में लाया। और अगर उसी समय आप भी उसी जैसे दुनिया वाले कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, तो आपने माना सुना है, जानते हो, दूसरों को सुना रहे हो, अपने स्वरूप में नहीं लाया है। स्वरूप में लाने के लिए प्रैक्टिकल कर्म में आना पड़ेगा। ठीक है।
सवेरे का जो मुरली क्लास है उसका विशेष क्या महत्व है, आप थोड़ा क्लियर करो, क्योंकि अभी सब थोड़ा मोबाइल होने के कारण और सब कुछ ऑनलाइन मिलने के कारण ये समझते कि जब भी समय मिले हम मुरली सुन लेंगे, पर ये जो सवेरे का महत्व है और उससे जो अंदर में एक बल भरता है वो कैसे?
कुछ कारण बन गए इसलिए पहले वाले जो नियम थे हमने इतनी दृढ़ता से अभी नहीं अपनाए। पहले तो जिस दिन अब्सेंट पड़ जाती थी उस दिन कहा जाता था आज आपकी हाजिरी लगी है, आप क्यों नहीं आए। अभी लॉकडाउन के कारण सबको यही कहा गया कि आप अपने अपने घरों में रहो और घर में रह करके मुरली सुनो। कई बार मैंने भी सवेरे अमृत वेले मुरली सुनाई है, लेकिन जब मुरली ऑनलाइन में सुनाया तो मैंने देखा सुनने वालों को जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, न स्नान किया हुआ होता है, न बिस्तर छोड़ा हुआ होता है, सुन रहे हैं, बैठे हैं, वही रंगीन ड्रेस है, उसी तरह से बिस्तर पर बैठ गए, मुरली सुन रहे हैं और कहते हैं हम तो रेगुलर हैं, हम तो रोज सुनते हैं। बाबा ने ये कायदा नहीं बनाया है। ये ज्ञान अमृत उन्हीं की बुद्धि में ठहर सकता है जिसका मन तन सब स्वच्छ है, पवित्र है। तो पहले तो ये नियम बनाना कि अगर मैं मुरली सुन रहा हूँ सवेरे अपने स्थानों पर, कोई कारण से सुन रहा हूँ, तो भी बहुत अच्छी तरह से एकांत में अलग बैठ करके, बिस्तर छोड़ करके, साफ स्वच्छ होकर, स्नान पानी करके, तैयार होकर के, बैज लगा के, कायदे से स्टूडेंट लाइफ में बैठो, तब तो कहेंगे इसने मुरली की अच्छी स्टडी की, सुना। बाकी उठ गए बिस्तर से और सुन रहे हैं, ठीक है। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा और टोका भी मैंने कि स्टूडेंट लाइफ नहीं है आपकी। बाबा ने अपने घर बनाए हैं जैसे कोई पेट्रोल पंप होते हैं। आज गाड़ी में अगर पेट्रोल कम होता है तो हम गाड़ी पेट्रोल भरने के लिए जाते हैं, ये स्टेशन्स हैं जहाँ पर डायरेक्ट बाबा की किरणें हैं, जहाँ पवित्र बहनें दिन रात शुद्ध विचारों में रमण करती हैं, जहाँ योग का अच्छा वातावरण बना हुआ है। हम सब अगर एक बार जाते हैं तो जैसे अपनी बैटरी को फुल चार्ज करके आते हैं। इसलिए बाबा ने सवेरे का एक बहुत अच्छा नियम बनाया, सवेरे सवेरे मुरली के समय क्लास में जा करके, क्लास में बैठ करके मुरली सुनने से एक अच्छा खजाना मिल जाता है। और सारे दिन के अंदर दिनचर्या में ही, कर्म में ही जब हम आते हैं तो कई प्रकार की बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, कोई न कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसमें बाबा की मुरली एक बहुत बड़ा सिंबल के रूप में, हथियार के रूप में काम करता है। इसलिए अगर सवेरे सुन करके अपनी बुद्धि को अच्छे चिंतन से हम भर लेते, सकारात्मक विचारों से भरपूर कर लेते, तो कई नेगेटिव बातों का हम सहज सामना कर सकते हैं, आने वाली परिस्थितियों को हम सहज पार कर सकते हैं। इसलिए नियम बनाया गया कि सवेरे जो भी टाइम है, 6 से 7 है 7 से 8 है, 1 घंटे के लिए आप क्लास में जाके मुरली सुनो और स्टूडेंट लाइफ की तरह से स्टूडेंट बन करके जाओ। जो बहने सुनाए, कोई भी बहन सुना रही हो, ये भगवान के महावाक्य मुझ आत्मा को आज के लिए क्या मिले वो नोट करने हैं। तो इस तरह से अगर सुनेंगे तो मैं समझता हूँ अमृत वेला आपका सवेरे का समय शक्ति संपन्न होगा और उसके बाद दिनचर्या के अंदर आपके हर कर्म में उस मुरली के द्वारा बाबा के हाथ और साथ का अनुभव होता रहेगा।
ओम शांति। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ वो मेरे बच्चे भी कोटों में कोई जानते हैं, तो हम जो बच्चे बने हैं उनसे योग लगा रहे, तो किससे योग लगा रहे तो फिर मतलब सही में जानते ही नहीं जिनको, तो फिर योग हम कैसे कह सकते कि हम योग में बैठे हैं या योग लगा रहे हैं?
जानना माना क्या है? ऐसा है कि परिचय तो सबके पास है, इस तरह से तो सब जानते हैं, लेकिन जो शक्तियां उसके पास है उन शक्तियों का अगर हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, माना हमने समझा नहीं है यथार्थ रीति से, पहचान करके योग लगा रहे हैं वो हमारा पिता है, वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु है, परमधाम वासी है, सर्व गुणों का सिंधु है, ज्ञान सबके पास है, लेकिन जो बाबा कहता है बच्चे जो है जैसा है उसकी जो शक्तियां हैं, जिस शक्तियों के आधार से वो विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य करता है, उसको पहचान लिया तो स्वाहा हो जाएगा, बलिहार हो जाएगा, क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, उसमें नंबरवार है। बाकी योग कर रहे हैं पहचान करके ही कर रहे हैं, लेकिन जिस रीति से समर्पित भाव से बलिहार हो जाए आत्मा कि भगवान का ये कार्य, इतना महान कार्य कैसे चल रहा है, उसको समझ करके अगर चलेगा तो तन मन धन समय संकल्प श्वास परवाना होता ना, समा जलती है तो कोई ऐसे फेरी फेरी पहन के चला जाता है, जानता तो है परवाना समा है, और कोई होते एकदम धक से आता है मर जाता है जल जाता है। तो बाबा कहता कौन से परवाने हैं, वो सब नंबरवार है। तो ऐसे ही पहचानने में भी सब नंबरवार हैं, एक जैसा पहचाना तो एक धक से बाबा मैं तेरा तू मेरा बस निश्चय हुआ। भले बाबा अभी बंधन है, प्रवृत्ति में रहो, घर गृहस्थ को संभालो, नियम बनाए हैं, लेकिन वहां चलते हुए प्रवृत्ति में रहते हुए भी बुद्धि में कोई भी आत्मा की आकर्षण नहीं रहेगी, कहीं पर भी बुद्धि फंसेगी नहीं, सबके बीच में रहते सब कार्य करते, मेरा तो एक दूसरा न कोई, अंदर से पक्की प्रतिज्ञा है और उसके प्रति पूर्ण समर्पित भाव है, तो यही पहचानना है और उसमें नंबर है।
ओम शांति भाई जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो अमृत वेले के बाद सोना नहीं है तो उसमें कभी कभी गलती हो जाती है, मतलब नियम नहीं होता है, और दूसरा कि 8 घंटे का जो बाबा बोल रहे हैं योग लगाना, तो अभी दिन ब दिन बहुत ही टफ टाइम आ रहा है, तो उसमें भी 8 घंटे का तो होता है कि कब तक हम लोग वहां तक संपूर्ण बन पाएंगे, तो उसके लिए क्या बता सकते हैं?
ऐसा है कि अमृत वेले योग के बाद सोने से मैंने जहां तक अनुभव किया है उसी समय कई प्रकार के बहुत इधर उधर के स्वप्न आते हैं और बहुत टाइम वेस्ट जाता है। अगर बहुत शरीर थका हुआ रहता है, दिन में रेस्ट नहीं मिलती है, तो बाबा हठ योग नहीं सिखाया हमको, भले 10-15 मिनट टाइम है, लेट गए, रेस्ट किया, लेकिन ऐसी गहरी नींद में चले गए तो फिर तो मुरली भी मिस हो जाएगी। कोई 1-2 घंटा सो जाते हैं तो सब दिनचर्या बिगड़ जाती है। इसलिए जितना हो सकता है आपका शरीर अगर स्वस्थ है, अब कोई को टीवी, कोई को शुगर, कोई को बीपी, कोई को कोई तकलीफ, कोई को रात को नींद नहीं आती, अब उनको कहें तुम अमृत वेला करने के बाद बिल्कुल नहीं सोना, तो दिन उनका बेकार हो जाएगा, उनका शरीर उनको साथ नहीं देगा। इसलिए बाबा कभी भी किसी भी बंधन में बांधता नहीं है। अगर आपका शरीर मजबूत है और आप बिना योग के बाद बिना सोए हुए अच्छी तरह से अपनी दिनचर्या चला सकते हो तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे कारण है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कोई बीमारियां हैं, या कोई ऐसा लगता है कि मैं बहुत थक जाता हूं, तो 1/2 घंटा 15 मिनट टाइम फिक्स करो, लेट गए तो अड़ जाने। लेकिन अगर दृढ़ता संकल्प है तो मैं समझता हूं ये भी परीक्षा पास हो जाती है, जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर लगता है कि जरूरी है, शरीर बहुत थक जाता है, तो रेस्ट करना जरूरी। बाकी दूसरी बात क्या पूछी थी? 8 घंटे कोई बैठ करके योग के लिए बाबा नहीं कहता है। हमको 8 घंटे ऐसे नहीं हट करके बैठ जाना है। आप अपना चार्ट बनाओ, अपना नियम बनाओ, बाबा की मुरली का मनन चिंतन है, रूर यहाँ चार सब्जेक्ट है ना, योग के भी चार हैं अलग अलग पिल्लर। कभी ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं, कभी अपने आप से बातें कर रहे हैं, रू ध्यान कर रहे हैं, बाबा से बहुत प्यार से वार्तालाप हो रही है, कभी कर्म में जा करके कर्मयोगी बन करके फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर के कर्म कर रहे हैं, और जब बैठते हैं तो बीज रूप स्थिति, बिंदु रूप स्थिति का अभ्यास करते हैं। तो वैरायटी करेंगे ना तो 8 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप 8 घंटा बैठ के करेंगे तो कईयों का शरीर साथ नहीं देता और कईयों के पास टाइम साथ नहीं देता। इसलिए बैठ के योग करने की बात नहीं है, आप निरंतर योग का अभ्यास करो, उसमें 8 घंटा आपका अच्छा योग हो जाएगा।
मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मेरे अपना स्वयं का अनुभव है कि कई बार बड़ी विकट परिस्थिति आती है और उसमें मन बिल्कुल हलचल में नहीं आता और अवस्था बड़ी निश्चिंत रहती है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी सी समस्या आती है और वो हमें परेशान कर जाती है और मन बिल्कुल हलचल में आ जाता है, तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए।
बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बड़ी बड़ी बातों को तो सहज पार कर लेते हैं, लेकिन कोई छोटी सी बात, कोई ने कुछ कह दिया, कोई इंसल्ट हो गई, मूड खराब हो गया, छोटी सी बात को नहीं सामना कर सकते। उसका एक कारण है, हमारे परिवार में दुआएं और बददुआएं। अगर आत्मा को दुआएं मिल रही हैं, बहुत दुआओं का स्टॉक है, तो वो बहुत सहज रीति से उस बात को पार कर लेता है। और मान लो किसी कारण से कोई मेरे से छोटे मोटी बात में डिस्टर्ब हो गया, मैंने सुख नहीं दे पाया, दुख मिल गया उसको, या कोई अपने आप में हमसे परेशान हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उसके अंदर से कोई दुख की आह निकल रही है, तो कोई भी बात, छोटी सी बात हमारे लिए बड़ी पहाड़ बन जाती है, हमारी खुशी को गायब कर देती है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, बात इतनी छोटी सी थी, बड़ी बड़ी बातों को हम पार करके आ गए ज्ञान योग से, संग से, बाबा की याद से, लेकिन छोटी सी बात ने उलझन में डाल दिया, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसी अवज्ञाएं हो गई सूक्ष्म में, जो दुआओं की जगह पर बददुआ मिल गई आत्मा की। आप इस पर ध्यान देंगे कि हमको सबकी दुआएं मिलती रहे, फिर ये छोटी छोटी बातें ऐसे सहज पार हो जाएंगी।
ओम शांति भाई जी, टाइम का मैनेजमेंट नहीं रहता है जैसे लौकिक में रहते हैं, जॉब का रहता है, तो याद का चार्ट कैसा बनाएं ताकि पूरा दिन बाबा को याद कर सके?
ऐसा है भैया, इसके लिए तो बाबा ने बड़ी युक्तियां बताई हैं कि बीच बीच में घंटे में 1 मिनट शरीरी बनने का अभ्यास करो, 15 बार 10 बार 8 बार, अगर अटेंशन है तो 1 मिनट का अच्छा योग भी आपकी स्थिति को योग युक्त बना देगा। आप ये नहीं को 1 मिनट ही किया, उसको कोई चार्ट में हिसाब ही लगाते रहते हैं, योग नहीं करते, हिसाब लगाते हैं, 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, आधा घंटा, वो हिसाब में चला जाता है, योग में नहीं जाता। अगर 1 मिनट आप बीच बीच में 1 घंटे में 1 मिनट शरीरी हो जाओ, वो जो शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, बाबा की किरणें आई, वो आपको 1 घंटा आगे का सफल करा देंगी, वो भी योग में गिनती हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कहो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करूँ। बाबा ने 5 स्वरूपों की ड्रिल बताई है, बीच बीच में जब समय मिलता है 1-1 मिनट उस स्वरूप में स्थित होकर के बैठ जाओ। मिलता है ऐसा, इतना कोई बुद्धि का काम नहीं होता जो बिल्कुल हम योग कर ही नहीं सकते, कोई कोई का हो सकता है, बहुत बड़ी ऐसी कारोबार हो, लेकिन बीच में अगर अभ्यास करेंगे, भोजन करने जाते हैं, पानी पीने जाते हैं, कोई भी काम होता है, उस समय भी एक मिनट बाबा की याद में बैठ जाओ, शरीरी हो जाओ, तो वो शक्ति जो है वो कई घंटे का योग बना देगी। चलो 12:30 हो गए।
ओम शांति। बाकी तो आज का विशेष दिन हमारे लिए बहुत डबल विशेष बन गया। दुनिया के अंदर सभी टीचर्स डे मनाते हैं, आज हम सभी के बीच हमारे परम आदरणीय ऐसे राजू भाई ने आकर के बहुत सुंदर रीति से हमें हमारी जो मुख्य पढ़ाई मुरली, तो उसको कितनी अच्छी तरह से हम सुन करके जीवन में धारण करें स्पष्ट किया। और हम सभी पूरे महादेव नगर ग्रुप और जो दिल्ली से भी कुछ एक भाई बहन आए हैं, सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, इसलिए कि जैसे कहते कि सतयुगी दुनिया का श्री कृष्ण मुरली वाला, संगम पर मधुबन के बाबा मुरली वाले, और इस समय हम सभी जहां कहीं भी राजू भाई का परिचय सुनते तो क्या सुनते, मुरली वाले राजू भाई। तो हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज आपने हमें इतनी सुंदर रीति से सभी बातें स्पष्ट की और उसमें बहुत मुख्य बातें भी सुनाई, जिसमें आपने कहा कि अभी हमें अपने संसार को बहुत छोटा बनाना है, बहुत सभी से कनेक्टेड होकर के नहीं रहना है, बस मैं और मेरा बाबा, सभी के साथ व्यवहार में भले आए पर बुद्धि से मैं और मेरा बाबा, तो इस धारणा को पक्का करना है और अपने बोल पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। तो आज के दिन पर हम सभी बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और कल्प कल्प का हमारा ये सौभाग्य बन गया जो हम सभी ज्ञान सरोवर में आपको ऐसे ही रूबरू सुनते रहेंगे। ओम शांति।